शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है भारत, भारत, भारत की महिमा अपरम अपार है। उस दिन भी बाबा ने भारत की कितनी महिमा की, आज भी बाबा ने दूसरे रूप से भारत की महिमा की है। सारा खेल भारत पर ही है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। भगवान भारत में आते हैं तो भारत कितना ऊंचा था, अब कितना नीचे गया है। जैसे बेड़ा होता है, बड़ा जहाज होता है, वो इतना महान बड़ा होता है, पर अगर वो नीचे जाए, वो दलदल में फंस जाए, तो उसका उद्धार कौन करेगा। तो भारत भी बहुत बड़ा बेड़ा है, लेकिन कितना ऊंचा था, कितना महान था, अब कैसे बेड़ा गर्क हो गया है। बेड़ा माना बड़ा बोट, बेड़ी छोटी बोट को कहते हैं, बेड़ा बड़े बोट को, जहाज। तो अब बाबा आया है उसको सेल्वेज करने, उसको उस दलदल से निकाल फिर से स्वर्ग बनाने। लेकिन बाबा अकेले तो नहीं करेंगे, तो हम बच्चे उनके मददगार बनते हैं। तो हम हैं सेल्वेशन आर्मी, भगवान के मददगार बन। इस जो भारत का इतना बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है, उसका फिर से उद्धार करने। तो सेल्वेशन आर्मी का काम क्या होता है? सदा अलर्ट रहना, सदा एक्टिव रहना, सदा चुस्त रहना, अपने काम को बहुत ही चुस्ती से करना। तो ऐसे सेल्वेशन आर्मी कैसी होनी चाहिए, बाबा ने कहा है। तो सेल्वेशन आर्मी अपने लिए सेल्वेशन नहीं मांगेगी, हम बाबा के सेल्वेशन आर्मी है, तो अपने लिए हम नहीं सेल्वेशन मांगेंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। बाबा कहते तुम तो वनवा में हो, तुम बिल्कुल सिंपल रहते हो, वनवा में सिंपल रहते हैं, कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, न खान पान की इच्छा, न वस्त्रों की पहनने की इच्छा। ये दुनियावी इच्छाएं जो आज संसार में है, बाबा कहते तुम्हारे में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तुम बेहद के सन्यासी हो। तो आज बाबा ने हमारे कर्तव्य भी याद दिलाए। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 10/4/2026 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, तो गर्व होना चाहिए हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। तो बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने, तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी होती है? अब ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ऊंचा जा रहे हैं, तो कितना हल्का होना चाहिए ना। परंतु हम बोझ उठा के चलते हैं, तो अगर बोझ उठा के चलेंगे तो ऊंचे कैसे जाएंगे, और दूसरों को ऊंचा कैसे उठाएंगे। अगर हमें ही बोझ होगा तो हम दूसरों को भी न ऊंचा उठा सकेंगे, न खुद भी ऊंचे उठ सकेंगे। इसीलिए बाबा, तो आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, कितने प्रकार के शौक होते हैं ना अपने लिए, खान पान, रहन सहन, पैरवाइश, न जाने कितने शौक होते हैं, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने अच्छा खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है, रुकावट डालेगी, ऊंचा नहीं ले जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तू वनवा में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, भूलना है सब कुछ तो इच्छाएं क्या रखेंगे, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यहां तक सब कुछ भूलना है, कहां तक, जहां तक ये शरीर भी याद न रहे, इतना सब कुछ भूलना है। ये दुंब तो सदा साथ है आत्मा के, लेकिन इसे भी भूलना है, तो इतना भूलना है इस कलयुगी दुनिया का। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि भारत ही अविनाशी खंड है, और इसका असल नाम तो भारत खंड है, इसीलिए इंडियन ओशन, भारत खंड शब्द कहते हैं। तो जो अभी जो भारत देश है उतना ही भारत नहीं था, पूरा खंड था, पूरा खंड माना कितना बड़ा होगा, नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है, भारत को कहा जाता है, क्या और नाम है भारत का, स्पिरिचुअल खंड, आध्यात्मिक खंड। केवल एक भारत देश ही है जो आध्यात्मिक देश है, बाकी कोई भी देश को आध्यात्मिक देश नहीं मानेंगे। और बाबा कहते इसका भारत को ही कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे ही नहीं, मुख्य है ही चार धर्म, तो चार खंड जैसे कहते हैं, मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, ये तीन बड़े बड़े खंड बन गए हैं। तो मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, अभी तो बहुत खंड हो गए हैं, इतने छोटे छोटे मठ पंथ भी हो गए हैं, और कई धर्मों में तो भी विभाजन है ना, मुसलमानों में ये शिया देश है, ये सुन्नी देश है, ऐसे भी है, तो एक धर्म में भी बंटवारा हो गया है। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत खंड हो गए हैं, भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही था, नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर है। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है, विदेश वाले भी मानते हैं कि भारत ये अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, लेकिन बाबा कहते नहीं, भारत ही स्वर्ग था, वही सच्चा खंड था, सचखंड था। वो समझते हैं स्वर्ग तो कहीं ऊपर में है, दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, छत में दिखाना का मतलब वो समझते स्वर्ग ऊपर है, लेकिन बाबा कहते नहीं, भारत ही स्वर्ग था, अब नहीं है, अब तो हेल है, नरक है। तो ये भी अज्ञान ठहराना कि स्वर्ग को ऊपर समझना, जबकि ये भारत ही स्वर्ग था, परंतु ये अज्ञान है जो समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है। तो ये अज्ञान है ना, ज्ञान और अज्ञान ये दो चीजें हैं। ज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान को क्या कहेंगे, दिन माना सोजरा, और रात को कहा जा, और अज्ञान को कहा जाता है रात यानी अंधियारा। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना, अब दिन माना सोजरा, ज्ञान तो ज्ञान माना सोजरा माना दिन, तो उसको क्या कहा जाता है, राइज। जब रोशनी आती है तो राइज, हाँ, सूर्योदय होता है। अंधियारा माना फॉल, तो सूर्य अस्त होता है तो अंधियारा शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य का उदय है तो राइज है। लोग सनराइज भी देखने जाते हैं और फिर सनसेट भी देखने जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सोजरा माना राइज उत्थान और अंधियारा माना फॉल गिरावट। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं, अब वो तो है हद की बात, इसके लिए कहा जाता है बेहद की बात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता होगा, और वो प्रजा तो यहाँ है सृष्टि पर है, तो जरूर वो प्रजा पिता है, तो प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सत गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। सोजरा अंधियारा दिन रात जो बेहद का है बाबा कहते, ये कोई नहीं समझते हैं। ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। अब परमात्मा ज्ञान का सागर है, पिता ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना टीचर भी है। वो केवल पिता तो नहीं है पर साथ साथ वो ज्ञान का सागर है, तो टीचर भी है। टीचर ही होगा ना जो ज्ञान देगा। तो बाबा कहते हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन। अब वही फादर पतित पावन भी है तो सतगुरु भी हो गया। टी पढ़ाता है तो टीचर भी हो गया, पावन बनाता है तो सतगुरु भी हो गया। तो पतित पावन और कोई को भी नहीं कहा जा सकता है। किसी भी देहधारी को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं पतित पावन। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं, न सबका फादर है, न सबका टीचर है, न सबका गुरु है, सतगुरु है। वो तो जब बड़ा हो श्री कृष्ण, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बने। ऐसे तो नहीं बनेगा बाप जब तक वो शादी करे फिर एक दो बच्चे का बाप बने। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी तो हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को वर्ल्ड गॉड फादर ने कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर केवल एक निराकार बाप को ही कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी बाप को नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। श्री कृष्ण को तो कह ही नहीं सकते, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को भी नहीं कह सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ही प्रजा पिता ब्रह्मा। हर एक का टाइटल अपना अपना है ना, ऐसे नहीं कि सबके टाइटल एक जैसे ही होंगे। तो बाबा कहते हैं वो है प्रजा पिता ब्रह्मा। उनसे फिर बिरादरी निकलती है, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, तो पूरी बिरादरी है ये सारे संसार की। उनसे बिरादरी निकलती है। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। आत्माएं निराकारी है पर जब वो शरीर में है और भक्ति मार्ग में है तब पुकारती है। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। ये बातें जो बाबा सुनाते हैं इसी रूप से कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर क्या हो जाता है? अभी सम्मुख बैठ समझाते हैं ज्ञान, फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है, सारा गुम हो जाता है जो भगवान ने ज्ञान दिया। फिर जब बाप आए तब आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाए, तो बच्चों को ही सम्मुख समझाकर फिर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। जब वर्षा देते हैं सुख में आत्माएं तो फिर तो सब भूल जाती है, फिर जब दुख में आती है फिर ये शास्त्र बनते हैं। फिर जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है वो आटे में नमक कैसे शास्त्रों में आ जाता है, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, भले बाबा कहते हैं शास्त्र बनते हैं लेकिन वो यथार्थ जो बाप ने ज्ञान दिया उस रूप से तो बन न सके। क्यों क्यों बन न सके? क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है, तो सच की दुनिया में जरूरत ही नहीं है। और फिर जब झूठ खंड हो जाता है तब फिर वो सच में मिलावट होकर के फिर वो शास्त्र बन जाते हैं। तो झूठ सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी नेचुरली, वो सच तो गुम हो गया तो झूठी चीज ही होगी। क्योंकि उतरती कला है ना, सच से तो चढ़ती कला होती है। जब सच आकर के भगवान सुनाते हैं तो वो तो चढ़ती कला होती है, फिर जब द्वापर शुरू होता है तो उतरती कला है, तो सच तो सच्चा तो रहा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सच से तो चढ़ती कला होती है, भक्ति है रात, अंधेरे में तो ठोकर ही खानी पड़ती है, माथा ही टेकते रहते हैं, टिप्पर घिसती रहती है, ऐसा घोर अंधेरा है मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, माउंट आबू में सनराइज भी है, हाँ वो आते हैं ना माउंट आबू आते तो वहाँ सनराइज भी बताते कि है, तो इस सूर्य का भी सनराइज और फॉल होता है, माउंट आबू में दोनों है, इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। तो बच्चे जाकर देखते हैं, जाते हैं सनसेट देखा है, जो सनसेट पॉइंट पर गए हैं एकदम दूर म्यूजियम के भी उस पार है, जो वहां गए हैं वहां तो टाइम अच्छा गए हैं, और यहाँ यहाँ जाते सनसेट पॉइंट पर वो हाथ उठाए, वो थोड़ा यहाँ कम गए हैं वहां ज्यादा गए हैं, अच्छा वो तो बहुत दूर है, वहां तो कितना पैदल भी चलना पड़ता है, तो यहाँ तो नजदीक है लेकिन वहां का दृश्य तो कुछ और ही होता है, तो यहाँ भी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, राइज ऑफ भारत और डाउन फॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है, कैसे डूबता है? जैसे सूर्य डूबता है, हाँ धीरे 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 कैसे डूबता है, तो और फिर नाम निशान ये खत्म हो जाता है, सूरज का अंधेरा हो जाता है। तो भारत भी ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्य नारायण की कथा में भी ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है और फिर बाप आकर उनको सेल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, फिर से बेड़ा ऊपर लाते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, ये मुरली जब चली थी उस समय नई नई प्रदर्शनी बनी थी, रमेश भाई, रतन मोहिनी दादी, दादी प्रकाशमणि, ये सब बॉम्बे में गाम देवी सेंटर पर ये चित्र बनाते थे, तो चित्र तैयार करते थे कि ऐसे ऐसे चित्र होनी चाहिए, और एग्जीबिशन बनाई थी, पहली एग्जीबिशन, ये लगता मुझे लगता 64 की बात होगी। तो उस समय मुझे याद है कैसे वो प्रदर्शनी लगाई थी मुंबई में, तो बाबा से पूछा था, बाबा इसका नाम क्या रखे, तो बाबा ने ही नाम उनको दिया, नव निर्माण, कुछ ऐसा नाम रखो। फिर दूसरा नाम बाबा ने दिया गेट वे टू हेवन, ये सब नाम बाबा ने उनको दिए थे। तो फिर कौन सा नाम पसंद किया, विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ऐसे ना, विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। फिर 69 में जब ये हमारा म्यूजियम बना तो उसमें नाम संग्रहालय का भी नाम ये रख दिया, विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय। फिर ऊपर में लिखा है उस म्यूजियम के ऊपर गेट वे टू हेवन, तो ये दोनों शब्द जोड़ दिए गए। तो बाबा कहते हैं तो नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है, यही नाम लखो, बाबा को ये नाम पसंद आ गया, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है व राइज कैसे होता है ये तुम दिखाते हो, जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, नीचे जाती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है, चढ़ता कैसे है, वो भी एक स्टोरी है, राइज एंड फॉल ऑफ भारत, ये कहानी के रूप में है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्य वंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ, वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशियों को राज्य देते हैं, तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, अब वो कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं, क्यों बदल गया राज्य, क्योंकि थोड़ा डाउनफॉल हुआ ना, 16 कला से 14 कला बन गए, तो फिर वो राजाई तो खत्म हो गई ना सत्युग स्वर्ग की, तो 14 कलाएं चंद्रवंश हो गया, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ, वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, अब वो कोई सीढ़ी तो नहीं समझते हैं कि ये डाउनफॉल है, ये तो बाप समझाते हैं, तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, सीढ़ी उतरते आए, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है और फिर उतरनी होती है सीढ़ी और फिर चढ़नी भी होती है, डाउनफॉल का भी फिर राह समझाया जाता है कि कैसे गिरती कला हुई, ये भी राह समझाया जाता है, भारत का डाउनफॉल कितना समय फिर राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। तो विचार सागर मंथन करना होता है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, ऐसे एग्जीबिशन में उनको निमंत्रण दे, टेम्पटेशन में उनको प्रलोभन दे कि आके देखो, कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है, भाइयों और बहनों आकर के समझो, ऐसे पर्चे बांटने हैं, बाप की महिमा तो पहले बतानी है, शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, शिव बाबा के महिमा का बोर्ड, तो इसलिए शिव बाबा बनाया वो कास्केट शिव का और फिर इतनी सारी किरणें, तो इसीलिए जो अपना म्यूजियम है उसमें ये राइज एंड फॉल ऑफ भारत दिखाया है, कैसे गिरती कला सब रावण की जंजीरों में और फिर कैसे लक्ष्मी नारायण आते हैं, फिर उसके बाद शिव बाबा का चित्र कि ये कौन लाता है राइज, शिव बाबा लाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप की महिमा तो पहले बतानी है, शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, है ना, शिव बाबा की किरणें का बोर्ड है, उसमें सारी महिमा लिखी हुई है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु। शिव बाबा से आकर के अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, ऐसा पैम्फलेट बनाना चाहिए। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े, बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। हाँ, कौन करते हैं जो लौकिक में सर्विस से भी छुट्टी ले, विदाउट पे भी बाबा की सेवा में जाते रहते, वो हाथ उठाए, है कोई? हाँ है, हाँ बहने भी है, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। कई तो विदाउट पे भी आते जाते हैं, हाँ नहीं हम विशेष सेवा है तो विदाउट पे नौकरी, कोई बात नहीं, तनख्वाह न भी मिले तो भी सेवा में जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, हमने तो देखा विदेशों में भी कई ऐसी बहनें बहुत सेवा करती, लेकिन दादी कहती थी नौकरी भी करो, ऐसे नहीं खाली बाबा की सेवा हो, क्योंकि वहां तो जॉब करना ही पड़ता है, अपनी कम से कम पॉकेट मनी के लिए तो आपको जॉब पार्ट टाइम भी करना ही है। लेकिन फिर दादी देखती थी कि ये बहुत सेवा में लग गई है, तो फिर दादी उनको छुड़वा भी देती थी। ऐसी कई बहने हैं जिनसे दादी ने जॉब भी छुड़वा दिया, क्योंकि फुल टाइम बाबा की वो सेवा में लगी रही। तो यहाँ भी ऐसे फिर बाबा छुड़वा देते हैं कि नहीं बाबा की सेवा में लग जाओ। तो बाबा कहते हैं खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। क्या हो? हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिव वंशी, वो रचयिता और ये रचना है। बाबुल नाम भी बहुत मीठा है, बाबुल माना पिता, तो बाबुल नाम भी बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना, शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, पर निराकार का आकार है परंतु वो साकार आकार नहीं है। शिव बाबा को निराकार कहते हैं, समझते हैं कोई आकार नहीं है। बिलविड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। हाँ, लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। हमारा कौन सा है? शिव शक्तियां नॉन वायलेंट गाई हुई है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसक दिखा दिया है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि की तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसीलिए क्या करते हैं, गुप्त गंगा कहते रहते हैं। गुप्त गंगा कहते हैं, बाण मारा और गंगा निकली, दिखाते ना भीष्म पिता में जब वो ये सैया पर थे, ये बाणों की सैया पर उसको प्यास लगी, तो अर्जुन मिलने आया तो अर्जुन को कहा मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने तीर मारा और वहां से गंगा निकल आई और भीष्म पिता को वो जल दिया। तो कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, यहाँ गौमुख भी है माउंट आबू में, देखा है गौमुख? जिन्होंने देखा है गौमुख हाथ उठाओ। बहुत थोड़ों ने देखा है, बहनों ने नहीं देखा है गौमुख? 700 सीढ़ी नीचे उतर के जाना होता है। तो गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, 24 घंटा पानी आता रहता है उस गौमुख से। तुम पूछेंगे तो कहेंगे ये गुप्त गंगा निकल रही है, गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है, प्रयागराज में गंगा जमुना तो प्रत्यक्ष है पर वो त्रिवेणी कहते हैं, तो कहते हैं गुप्त सरस्वती है वहां। तो त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अलफ बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, अब उसके कितने नाम दे दिए हैं, है तो वो एक ही। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की भाषा ही मिलेगी, अल्लाह से बहिष्ट मिलेगा, भगवान से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचयिता रचना है ही स्वर्ग, हाँ रचयिता की रचना है ही स्वर्ग, रचयिता रचेगा तो स्वर्ग ही रचेगा। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा, चलो राम का भी राज्य दिखाते, तो राम जब आया तो एक तो राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार, तो कितना श्रेष्ठ होगा उसका राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना श्रेष्ठ होगा, वो नरक थोड़ी रचेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचयिता कौन है, वो निराकार को भी राम कहते हैं, तो कौन सी है उसकी रचना, बाबा कहते हैं कि वो उसको निराकार रचयिता कौन है पता ही नहीं। तुम जानते हो कि नरक का रचयिता, नरक का रचयिता कौन है? रावण, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है, रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। आप देखो बाबा कहते कैसे दोनों का रूप बड़ा दिखा दिया, शिव बाबा का भी शिवलिंग कितना बड़ा बनाते, और फिर जब महिमा गाते हैं परमात्मा की तो क्या गाते, हजारों सूर्यों से तेजोमय, यानी वो बड़ा बताने के लिए बहुत विराट है, बहुत ऊंचा है, तो इसीलिए ये बताते हैं। तो जैसे शिव बाबा के लिए कहते हैं वैसे रावण के लिए भी कहते, इतना बड़ा बड़ा रावण का बुत बनाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं नरक का रचयिता रावण है जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है, रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाते हैं, कैसी शक्ल दिखाते रावण की, बोलते भी हैं रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है कि ये पेशगीर यानी विस्तार बड़ा है, पूरा रावण का कितना बड़ा विस्तार है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, तो रावण का भी बड़ा बुत बनाते, अभी शिव बाबा भी तो बिंदी है परंतु चित्र बड़ा बना दिया उनकी महानता दिखाने के लिए या विराट रूप दिखाने लिए बड़ा बड़ा बनाते हैं, परंतु चित्र बड़ा बना दिया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो, पुजारी तो बनना है ना, इसीलिए फिर शिवलिंग बना दिया पूजा के लिए। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटि के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजार सूर्यों से ज्यादा तेजो में कैसे होगा। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर हजार सूर्यों से तेजो में कैसे होगा, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है। अगर परमात्मा हजार सूर्यों से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वो आत्मा बन के प्रवेश कैसे करे। तो एक तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा तो बाप का रूप भी ऐसा होगा, है ना, इतना फिर परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। आत्मा सो परमात्मा अगर कहते भी हैं तो आत्मा तो स्टार है तो परमात्मा भी तो स्टार होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, शिवलिंग कितने बड़े बड़े बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। हाँ देखिए पांडवों की गुफा, एलिफेंटा केव्स है मुंबई के पास, थोड़ा बोट में जाते हैं वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। उन गुफाओं में ये पांडवों के इतने बड़े बड़े 10-15 फीट ऊंचे ऊंचे वो दिखाया है, उसमें कारीगरी है गुफाओं में। तो बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं है, अब इतने बड़े बड़े थोड़ी लंबे होंगे पांडव। ये है ही पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई तो अलग अलग होता है। बाबा पढ़ाते भी और धंधा भी सिखाते हैं। पढ़ाई अलग होती है, धंधा अलग होता है। जो धंधे में लग जाते हो पढ़ेंगे थोड़ी, पढ़ाई है तो धंधा थोड़ी करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों साथ साथ है, पढ़ाई भी और धंधा भी। बाबा पढ़ाते भी और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है, इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं, ज्ञान की समझ अनुसार कोई महारथी बनता, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा। बाकी कोई घोड़े पर या ऐसे पैदल वैसे तो नहीं है, या हाथी पर। महारथी घोड़े सवार प्यादा कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं, हम न हथियार है न कोई घोड़े और हाथी पर है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, ये गोदरेज का ताला और कोई खोल न सके। बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है, ये गॉड ही आकर के खोलते हैं। बाप के पास बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन पहले कभी मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ भी न सके कि पहले कभी मिले हो इसी रूप में इसी स्थान पर और ऐसे ही पहले कभी मिले, कोई और पूछ भी न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा तो नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है, हरेक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन से मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, है ना, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने लिए, फिर जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, और आने समय सूक्ष्म वतन होता है, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं होता है। क्यों आने समय सूक्ष्म वतन क्यों नहीं है, केवल जाने समय सूक्ष्म वतन है, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन रचकर फिर सृष्टि पर आते हैं, उसके पहले सूक्ष्म वतन नहीं है। इसीलिए सूक्ष्म वतन का तो किसको पता ही नहीं ना। तो देखो बाबा ने क्या राज बताया कि आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसको होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी को भी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी नहीं होता है, ज्ञान मार्ग में होता है। और हमारी दादी गुलजार को सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था, औरों को फिर बाद में हुआ। तो संगम पर ही सूक्ष्म वतन है, क्योंकि शिव बाबा आते सूक्ष्म वतन रचते हैं ताकि बच्चे ध्यान में जाए और सूक्ष्म वतन में जाए। और सूक्ष्म वतन में कैसे दोनों मिलते हैं, संगम युगी ब्राह्मण और सत्युगी देवताएं दोनों सूक्ष्म वतन में मिलते हैं, पियर घर ससुर घर। बाबा कहते हैं दोनों सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसको होता ही नहीं है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने लिए तपस्या नहीं की जाती, जानते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं। वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में तुम आएंगे। अभी अंत में वाया सूक्ष्म वतन जाकर तुम नई दुनिया में आएंगे, फिर जब आएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं होगा, केवल अभी संगम युग के लिए ही है। तो बाबा कहते हैं वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे, इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है। ये पियर घर है और विष्णु को पिता नहीं कहेंगे। तो विष्णु कौन हो गया हमारा, हाँ चाचा हो गया और शंकर ताया हो गया। तो बाबा कहते विष्णु को पिता नहीं कहेंगे। तो ये तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है, ब्रह्मा हमारे पिता है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। तो विष्णु कौन हो गया, ससुर हो गया हाँ वो विष्णु है ससुर घर। तो ये वो है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है ना। जो पियर घर के कपड़े हैं वो तो सब पियर घर में ही छोड़ के जाएगी ना। जब ससुर घर जाती है उसको तो सब नए नए कपड़े मिलते हैं, तो पुराने कपड़े सब पियर घर में छोड़ जाती है। अब तुम तो पुरानी दुनिया को ही छोड़ जाते हो, पियर खाली कपड़े नहीं पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है, कुमारी का वनवा और तुम्हारे वनवा में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी, हाँ बहुत ऊंची साड़ी पहनेंगी, महंगी साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवा में, वनवा और वानपरस एक ही बात है, वनवा और वानपरस एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या, हाँ साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या, नहीं नहीं एकदम बिल्कुल बहुत महंगी साड़ी तो हम नहीं पहनेंगे ना। तो बाबा कहते शरीर ही छोड़ना है तो क्या साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या, हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। ऐसे होता है क्या कुमारियां, हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, अब बहुत महंगी चीज होगी तो उसको कितना संभालना पड़ता है। और आजकल तुम देखे बॉल पेन होती है ना, कहां भी छोड़ देते हैं। तो अगर वो बहुत बड़ी महंगी बॉल पेन होगी या पेन होगी तो गुम हो जाए तो कितना दुख होता है, लेकिन हल्की है चलो गुम हो गई तो कोई बात नहीं, यूज एंड थ्रो, हल्की, आजकल वही लेते हैं, कोई महंगी महंगी बॉल पेंस या पेंस भी नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। हम ऊंचा चढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें जो अटक डालती है, बाबा कहते हैं उसको तो छोड़ देना, भूल जाना है। मंजिल बहुत बड़ी है, कथा में भी सुनाते हैं ना, पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, सन्यासी बन रहा था तो पत्नी ने कहा ये सब छोड़ दो, ये लाठी भी क्यों ले जाते हो, वो भी छोड़ दो। तो बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको ही कहा जाता है सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है, अब फिर वो अंदर आ गए हैं, आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी उतरने, आगे बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है, वो भी तो गिरती कला में आ गए हैं ना, तो उतरने वालों की क्या महिमा हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने में, उनके उनमें भी क्या ताकत होगी, अभी जो नई नई आत्माएं होगी उसमें तो क्या ताकत होगी। तो बाबा ने एक बार कहा था ना कि जैसे मच्छरों सदृश है, वो मच्छर की क्या आयु होती है, अभी आया थोड़े घंटे जिया और मर गया, तो जो आत्मा ही अंत में आएगी वैसे ही होगी ना, ताकत क्या होगी, मच्छरों जितनी ताकत होगी। तो बाबा कहती हैं, बाबा कहते हैं उनकी क्या ताकत होगी, तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए, सर्विसेबल बच्चे तो सर्विस में उछलते रहेंगे, ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे, हाँ कैसे भाषण करे, जैसे बाबा उछलता है। बाबा भी गद्दी पर बैठ करके कैसे उछलते थे ना, हाँ बाबा खगिया मारते थे मैं ये बनूंगा, तो जैसे बाबा उछलता है उसमें फंक नहीं होना चाहिए दूसरों की सेवा करने में। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापिस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा, हजार भुजाओं वाला मेरे साथ है, तो बाबा कहते डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद तो स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, भगवान मेरा साथी है, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। मधुरता आएगी जब पवित्रता हो। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। जितना ही बुद्धि में नशा उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता। तो ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच भ्राता हरीश मोहिल जी आए हैं, हम सब उनको निमंत्रण देते हैं, आइए स्टेज पर और बाबा का एक प्यारा सा गीत गाएं। खास मुरली के लिए आए हैं, कल ही आए थे तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप रुक जाइए, नहीं तो कल ही जा रहे थे वापस, लेकिन खास मुरली सुनने और फिर